अध्ययन लेख 22। इस लेख का अध्ययन 25 से 31 जुलाई के दौरान किया जाएगा। विषय: यहोवा की सलाह माने, बुद्धिमान बने। ये लेख नीतिवचन 2 के 6 पर आधारित है, जहां लिखा है, बुद्धि यहोवा ही देता है। गीत 89, सुन के अमल करें। एक झलक: सुलेमान और यीशु बहुत बुद्धिमान थे, क्योंकि यहोवा ने उन्हें बुद्धि दी थी। उन दोनों ने कई सलाहें दीं, जिन्हें मानकर हम पैसे, काम और खुद के बारे में सही सोच रख सकते हैं। इस लेख में हम ऐसी ही कुछ सलाहों पर गौर करेंगे। हम ये भी जानेंगे कि इन्हें मानकर कुछ भाई बहनों को क्या फायदा हुआ है। पैराग्राफ 1, सवाल: हम सबको परमेश्वर से मिलने वाली बुद्धि की जरूरत क्यों है? सही फैसले लेने के लिए हमें बुद्धि की जरूरत होती है। जब भी आपने कोई मुश्किल फैसला लिया होगा, तो आपने बेशक यहोवा से प्रार्थना की होगी और उससे बुद्धि मांगी होगी। राजा सुलेमान ने लिखा, बुद्धि हासिल कर, क्योंकि ये सबसे जरूरी है। नीतिवचन 4 के साथ में लिखा है, बुद्धि हासिल कर, क्योंकि ये सबसे जरूरी है। तू जो कुछ हासिल करे, उसके साथ समझ भी हासिल करना। सुलेमान ये नहीं कह रहा था कि हम इंसानों से बुद्धि हासिल करें, बल्कि वो ये कह रहा था कि हम परमेश्वर यहोवा से बुद्धि पाएं। पर क्या आज की समस्याओं का सामना करने के लिए परमेश्वर से मिलने वाली बुद्धि काम आ सकती है? बिल्कुल। आइए इस बारे में जानें। पैराग्राफ 2, सवाल: बुद्धिमान बनने का एक तरीका क्या है? बाइबल में ऐसे दो आदमियों के बारे में बताया है जो अपनी बुद्धि के लिए जाने जाते थे। उनमें से एक था सुलेमान। उसके बारे में लिखा है, परमेश्वर ने सुलेमान को बहुतायत में बुद्धि और पैनी समझ दी। पहला राजा 4:29। दूसरा था यीशु। उसके जितना बुद्धिमान इंसान आज तक पैदा नहीं हुआ। उसके बारे में भविष्यवाणी की गई थी, उस पर यहोवा की पवित्र शक्ति छाई रहेगी, इसलिए वो बुद्धिमान होगा, उसमें बड़ी समझ होगी। यशाया 11:2। इन दोनों आदमियों ने जो बातें सिखाई, अगर हम उन्हें पढ़ें और उनके मुताबिक काम करें, तो हम भी बुद्धिमान बन सकते हैं। पैराग्राफ 3, सवाल: इस लेख में हम किस बारे में चर्चा करेंगे? परमेश्वर से मिली बुद्धि की वजह से सुलेमान और यीशु जिंदगी के कई मामलों में अच्छी सलाह दे पाए। इस लेख में हम उनमें से 3 मामलों के बारे में चर्चा करेंगे। हम जानेंगे कि हम पैसे, काम और खुद के बारे में सही सोच कैसे रख सकते हैं। पैसे के बारे में। पैराग्राफ 4, सवाल: सुलेमान और यीशु के बीच एक बड़ा फर्क क्या था? सुलेमान बहुत रईस था और आलीशान महलों में रहता था। दूसरी तरफ यीशु के पास ज्यादा कुछ नहीं था, न ही उसके पास खुद का घर था, लेकिन पैसे के बारे में उन दोनों की सोच सही थी। ऐसा क्यों? क्योंकि उन दोनों को बुद्धि यहोवा परमेश्वर से मिली थी। पैराग्राफ 5, सवाल: पैसों के बारे में सुलेमान की क्या सोच थी? सुलेमान ने बताया कि पैसा हिफाजत करता है, समुपदेशक 7:12। हम पैसे से जरूरत की चीजें खरीद सकते हैं और कुछ इच्छाएं भी पूरी कर सकते हैं। हालांकि सुलेमान के पास बहुत धन दौलत थी, फिर भी वो जानता था कि पैसा ही सब कुछ नहीं है। उसने लिखा, एक अच्छा नाम बेशुमार दौलत से बढ़कर है, और आदर पाना सोना चांदी पाने से कहीं अच्छा है। नीतिवचन 22:1। उसने ये भी देखा कि जिन लोगों को पैसों से प्यार होता है, वो अक्सर खुश नहीं होते। उसने कहा कि हम पैसे को ही सब कुछ न माने, क्योंकि पैसा आज है तो कल नहीं होगा। पैराग्राफ 6, सवाल: पैसों और चीजों के बारे में यीशु की सोच क्या थी? यीशु भी पैसों और चीजों के बारे में सही सोच रखता था। उसने खाने पीने का मजा लिया। उसका पहला चमत्कार था कि उसने पानी को सबसे बेहतरीन किस्म की दाख मदिरा में बदल दिया। जिस दिन उसकी मौत हुई, उस दिन उसने एक महंगा कुर्ता पहना हुआ था, पर उसने कभी भी इन चीजों को सबसे ज्यादा अहमियत नहीं दी। उसने अपने चेलों से कहा, कोई भी दास 2 मालिकों की सेवा नहीं कर सकता। तुम परमेश्वर के दास होने के साथ साथ धन दौलत की गुलामी नहीं कर सकते। मत्ती 6:24। उसने उन्हें यह भी सिखाया कि अगर वो पहले राज की खोज करेंगे, तो यहोवा उनकी सारी जरूरतें पूरी करेगा। मत्ती 6:31-33 में लिखा है, इसलिए कभी भी चिंता करके ये मत कहना कि हम क्या खाएंगे या हम क्या पिएंगे या हम क्या पहनेंगे, क्योंकि इन्हीं सब चीजों के पीछे दुनिया के लोग दिन रात भाग रहे हैं। मगर स्वर्ग में रहने वाला तुम्हारा पिता जानता है कि तुम्हें इन सब चीजों की जरूरत है, इसलिए तुम पहले उसके राज और उसके नेक स्तरों की खोज में लगे रहो और ये बाकी सारी चीजें भी तुम्हें दे दी जाएंगी। पैराग्राफ 7। सवाल, जब एक भाई ने पैसों के बारे में सही सोच रखी तो उसे क्या क्या आशीषें मिली? जब कई भाई बहनों ने पैसे के बारे में यहोवा की सलाह मानी तो उन्हें बहुत फायदा हुआ। डैनियल नाम के एक अविवाहित भाई का उदाहरण लीजिए। उसने कहा, जब मैं जवान था तो मैंने सोच लिया था कि मैं अपनी जिंदगी यहोवा की सेवा करने में लगा दूंगा। उसने कम चीजों में गुजारा करना सीखा, इसलिए वो राहत काम में हाथ बटा पाया और बैथेल भी जा पाया। वो कहता है, मुझे अपने फैसले पर कोई अफसोस नहीं। मैं चाहता तो बहुत पैसे कमा सकता था, पर मुझे वो आशीषें कहां मिलती जो मुझे आज मिल रही हैं। मुझे खुशी है कि मैंने परमेश्वर के राज को पहली जगह दी और कई अच्छे दोस्त बनाए। दुनिया की सारी दौलत भी मुझे ये खुशी नहीं दे सकती। सच में, जब हम पैसों के पीछे भागने के बजाय यहोवा की सेवा करते हैं तो हमें ढेरों आशीषें मिलती हैं। पैराग्राफ 6 और 7 से संबंधित तस्वीरों के बारे में। जॉन और टॉम एक ही मंडली में हैं। एक तरफ जॉन अपनी गाड़ी का ख्याल रखने में कुछ ज्यादा ही वक्त लगा देता है, दूसरी तरफ टॉम अपनी गाड़ी से दूसरों को प्रचार और सभाओं में ले जाता है। चित्र शीर्षक, पैसे कमाने और दूसरी चीजें हासिल करने के बारे में हमारी क्या सोच है? क्या हम इन्हें पहली जगह दे रहे हैं या यहोवा की सेवा को? काम के बारे में। पैराग्राफ 8। सवाल, काम के बारे में सुलेमान की सोच क्या थी? सुलेमान ने कहा कि मेहनत करने से खुशी मिलती है और ये परमेश्वर की देन है। सबुपदेशक 5:18-19 में लिखा है, मैंने जिस बात को सही और अच्छा पाया वो ये है कि सच्चे परमेश्वर ने इंसान को जो जिंदगी दी है उसमें वो खाए पिए और धरती पर अपनी सारी मेहनत से खुशी पाए, क्योंकि यही उसका इनाम है। इतना ही नहीं, अगर सच्चे परमेश्वर ने इंसान को धन दौलत देने के साथ साथ उसका मजा लेने के काबिल बनाया है तो वो उन चीजों का मजा ले और अपनी मेहनत से खुशी पाए। ये परमेश्वर की देन है। उसने लिखा, मेहनत के हर काम से फायदा होता है। नीतिवचन 14:23। सुलेमान ने खुद बहुत मेहनत की। उसने अपने लिए घर बनाए, अंगूरों के बाग और बगीचे लगाए और पानी के कुंड बनाए। उसने कुछ शहर भी खड़े किए। इससे जरूर सुलेमान को खुशी मिली होगी, पर उसने जाना कि सबसे ज्यादा खुशी इन कामों से नहीं बल्कि यहोवा की सेवा करने से मिलती है। इसलिए उसने यहोवा के लिए एक शानदार मंदिर बनाया जिसे बनने में 7 साल लगे। सब तरह के काम करने के बाद सुलेमान समझ गया कि यहोवा की सेवा करना ही सबसे जरूरी काम है। उसने लिखा, सारी बातें सुनी गईं और अंत में निचोड़ ये है, सच्चे परमेश्वर का डर मान और उसकी आज्ञाओं पर चल। सबुपदेशक 12:13। पैराग्राफ 9। सवाल, हम कैसे जानते हैं कि यीशु ने काम को सबसे ज्यादा अहमियत नहीं दी? यीशु भी बहुत मेहनती था। जब वो जवान था तो उसने बढ़ई का काम किया। उसके माता पिता उसकी मेहनत की बहुत कदर करते होंगे क्योंकि उनका परिवार बहुत बड़ा था और घर चलाना मुश्किल था। यीशु परिपूर्ण था, इसलिए वो जो भी बनाता था वो सबसे उम्दा किस्म का होता होगा और सब लोग उसी से काम करवाना चाहते होंगे। यीशु को जरूर ये काम करने से खुशी मिलती होगी, लेकिन वो हर समय यही काम नहीं करता रहा। उसने यहोवा की उपासना करने के लिए भी वक्त निकाला। आगे चलकर जब वो पूरे समय प्रचार करने लगा, उसने अपने सुनने वालों से कहा, उस खाने के लिए काम मत करो जो नष्ट हो जाता है, बल्कि उस खाने के लिए काम करो जो नष्ट नहीं होता और हमेशा की जिंदगी देता है। यूहन्ना 6:27। और अपने पहाड़ी उपदेश में उसने कहा, अपने लिए स्वर्ग में धन जमा करो। मत्ती 6:20। पैराग्राफ 10। सवाल, हमें काम की जगह पर मेहनत तो करनी है, पर क्या नहीं करना है? अगर हम बाइबल में दी यहोवा की सलाह माने तो हम काम के बारे में सही सोच रख पाएंगे। बाइबल में लिखा है कि हम कड़ी मेहनत करें और ईमानदार रहें। इफिसियों 4:28। अक्सर हमारी ईमानदारी और कड़ी मेहनत देखकर हमारे बॉस हमारे काम की तारीफ करते हैं और बताते हैं कि वो हमसे कितना खुश हैं। ऐसे में हो सकता है कि उन्हें और खुश करने के इरादे से हम ज्यादा घंटे काम करने लगे हैं। हमें लग सकता है कि ऐसा करने से वो साक्षियों के बारे में अच्छा सोचेंगे, लेकिन काम की जगह पर ज्यादा घंटे बिताने से हमारे पास यहोवा और अपने परिवार के लिए वक्त ही नहीं बचेगा। अगर हमारे साथ ऐसा हो रहा है तो हमें कुछ बदलाव करने होंगे। पैराग्राफ 11, सवाल, विलियम ने काम के बारे में सही सोच रखना कैसे सीखा? विलियम नाम का एक जवान भाई पहले एक प्राचीन के यहां नौकरी करता था। उसने उसी प्राचीन से सीखा कि वो काम के बारे में सही सोच कैसे रख सकता है। विलियम ने कहा, वो भाई संतुलित तरह से काम करने में एक अच्छी मिसाल है। वो कड़ी मेहनत करता है और उसका अपने ग्राहकों में अच्छा नाम है क्योंकि उसका काम अच्छा होता है, लेकिन शाम को समय होने पर वो अपना काम रोक देता है और अपने परिवार और उपासना पर ध्यान देता है, और पता है आपको, वो हमेशा खुश रहता है। पैराग्राफ 10 और 11 से संबंधित तस्वीरों के बारे में। जॉन ओवरटाइम कर रहा है। जब भी उसका बॉस उसे ओवरटाइम करने के लिए कहता है तो उसे खुश करने के लिए वो मान जाता है। उसी शाम टॉम, जो एक सहायक सेवक है, एक प्राचीन के साथ रखवाली भेंट करने आया है। टॉम ने अपने बॉस को पहले ही बताया है कि हफ्ते के कुछ दिन शाम के वक्त उसकी सभाएं हैं और उसे दूसरी जिम्मेदारियां पूरी करनी हैं, इसलिए वो देर तक काम नहीं कर सकता। चित्र शीर्षक, हम काम के साथ साथ यहोवा की सेवा करने के लिए वक्त कैसे निकाल सकते हैं? खुद के बारे में। पैराग्राफ 12, सवाल क, हम कैसे कह सकते हैं कि सुलेमान की खुद के बारे में सही सोच थी? सवाल ख, आगे चलकर वो कैसे बदल गया? जब तक सुलेमान यहोवा का वफादार रहा तब तक उसकी खुद के बारे में सही सोच थी। जब वो जवान था और नया नया राजा बना था तो वो नम्र था। उसने माना कि उसे कम तजुर्बा है, इसलिए उसने यहोवा से मदद मांगी। वो ये भी समझता था कि घमंड करना खतरनाक हो सकता है, इसी वजह से उसने लिखा, विनाश से पहले घमंड और ठोकर खाने से पहले अहंकार होता है। नीतिवचन 16:18। पर अफसोस, आगे चलकर वो खुद ही ये बात भूल गया। वो इतना घमंडी हो गया कि उसने परमेश्वर की आज्ञाएं माननी छोड़ दी। उदाहरण के लिए, यहोवा ने आज्ञा दी थी कि एक राजा को बहुत सी शादियां नहीं करनी चाहिए ताकि उसका मन सही राह से भटक ना जाए, व्यवस्था विवरण 17:17। लेकिन सुलेमान ने ये आज्ञा नहीं मानी और कई औरतों से शादी कर ली। उसकी 700 पत्नियां और 300 उपपत्नियां थीं, जिनमें से ज्यादातर झूठे देवी देवताओं को पूजती थीं। शायद सुलेमान को लगा होगा कि उसे कुछ नहीं होगा, पर वो गलत था। इन्हीं पत्नियों की वजह से वो यहोवा से दूर चला गया। पैराग्राफ 13, सवाल, आप यीशु की तरह नम्र कैसे बन सकते हैं? यीशु हमेशा नम्र रहा। धरती पर आने से पहले उसने स्वर्ग में अपने पिता के साथ बहुत कुछ किया था। उसी के जरिए स्वर्ग में और धरती पर सब चीजें सिरजी गईं। कुलूसियों 1:16। जब यीशु का बपतिस्मा हुआ तो उसे ये सारी बातें याद आ गई होंगी, लेकिन ये सब सोचकर वो घमंड से फूल नहीं उठा। उसने कभी भी अपनी बातों और कामों से नहीं दिखाया कि वो दूसरों से बढ़कर है। इसके बजाय उसने अपने चेलों से कहा कि वो धरती पर सेवा करवाने नहीं बल्कि सेवा करने आया है, और इसलिए आया है कि बहुतों की फिरौती के लिए अपनी जान बदले में दे। मत्ती 20:28। उसने ये भी कहा कि वो अपने मन मुताबिक काम नहीं करता बल्कि वो करता है जो यहोवा चाहता है। सच में यीशु कितना नम्र था, हमें भी उसकी तरह नम्र बनना चाहिए। पैराग्राफ 14, सवाल, खुद के बारे में सही सोच रखने के लिए हम यीशु की कौन सी बात याद रख सकते हैं? हमें नम्र तो रहना है, पर हमें ये नहीं सोचना है कि हम बिल्कुल बेकार हैं या हमारा कोई मोल नहीं। यही बात यीशु ने भी सिखाई। एक बार उसने कहा, तुम्हारे सिर का एक एक बाल तक गिना हुआ है। मत्ती 10:30। इस बात से हमें यकीन होता है कि यहोवा को हमारी बहुत परवाह है और उसकी नजर में हम अनमोल हैं। इसलिए अगर यहोवा ने हमें उसके उपासक बनने और हमेशा की जिंदगी देने के लिए चुना है तो हमें कभी भी उसके इस फैसले पर सवाल नहीं उठाना चाहिए। पैराग्राफ 15, सवाल क, प्रेरित दुर्ग में हमें कैसी सोच रखने का बढ़ावा दिया गया था? सवाल ख, जैसे तस्वीरों में दिखाया गया है, अगर हम सिर्फ खुद के बारे में सोचते रहें तो हम कौन सी आशीषें पाने से चूक सकते हैं? करीब 15 साल पहले प्रेरित दुर्ग में बताया गया था कि अगर हम खुद के बारे में सही सोच रखें तो इसमें हमारी भलाई है। उसमें लिखा था, बेशक हम खुद को कभी इतना बड़ा नहीं समझना चाहेंगे कि हम घमंड से फूल जाएं, और ना ही हम खुद को बिल्कुल गिरा हुआ समझना चाहेंगे। इसके बजाय हमें अपनी खूबियों और कमियों को ध्यान में रखकर अपने बारे में सही नजरिया रखने की कोशिश करनी चाहिए। इसी बात को एक मसीह स्त्री ने यूं बताया, मैं संत नहीं तो दुष्ट भी नहीं, औरों की तरह मुझमें भी अपने हिस्से की खूबियां और खामियां हैं। पैराग्राफ 15 से संबंधित तस्वीरों के बारे में, जॉन को सिर्फ खुद की पड़ी है, लेकिन टॉम यहोवा की सेवा को जिंदगी में पहली जगह देता है। वो एक राजघर की मरम्मत करने में हाथ बटा रहा है, इस वजह से वो और भी दोस्त बना पाया है। चित्र शीर्षक, अगर हम सिर्फ खुद के बारे में ही सोचते रहें तो हम कौन सी आशीषें पाने से चूक सकते हैं? पैराग्राफ 16, सवाल, यहोवा किस वजह से हमें सलाह देता है? यहोवा हमसे बहुत प्यार करता है और चाहता है कि हम खुश रहें, इसलिए वो अपने वचन के जरिए हमें सलाह देता है जिन्हें मानने से हम बुद्धिमान बनते हैं। आज दुनिया में देखें तो बहुत से लोग सिर्फ पैसे, काम और खुद के बारे में सोचते हैं और इस वजह से कई मुसीबतों में फंस जाते हैं। लेकिन अगर हम यहोवा की सलाह माने और उसकी सेवा को अपनी जिंदगी में पहली जगह दें तो हम पैसे, काम और खुद के बारे में सही सोच रख पाएंगे और खुश रहेंगे। इसलिए आइए हम ठान लें कि हम बुद्धिमान बनकर अपने पिता यहोवा का दिल खुश करेंगे। सुलेमान और यीशु ने आगे बताए मामलों के बारे में जो सलाह दी उससे हम क्या सीखते हैं? पैसे के बारे में, काम के बारे में, खुद के बारे में। गीत 94, यहोवा के वचन के लिए एहसानमंद। लेख समाप्त।